नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केवल 10 वर्ष में स्टार्टअप इंडिया क्रांति बन गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत के युवा वास्तविक समस्याएं हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने नए सपने देखने वाले युवा नवोन्मेषकों के साहस की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप संस्थापकों और नवोन्मेषकों का एकत्र होना तेजी से विकास कर रहे नए भारत के भविष्य को दिखाता है।
नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूँ। अभी मुझे कुछ स्टार्टअप की दुनिया के लोगों से उनके कुछ अचीवमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे उसे देखने का अवसर मिला, कुछ साथियों को सुनने का अवसर मिला, एग्रीकल्चर में काम कर रहे स्टार्टअप, फिनटेक, मोबिलिटी का सेक्टर, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी का फील्ड। आपके जो आइडियाज हैं वो सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को इम्प्रेस करने वाला है।
श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शनी क्षेत्र का अवलोकन किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले एक दशक में स्टार्टअप तंत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि 2016 में केवल 400 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 2 लाख से अधिक हो गई है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक पूर्व 16 जनवरी 2016 में की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है।
इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहाँ से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूँ कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है।
महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने 227 में से 115 सीटों पर बढ़त बना ली है। मुंबई में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 9 उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया जा चुका है। इनमें से शिवसेना ने 4, भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 1 वार्ड जीता है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन ने भी 1 सीट जीती है। छत्रपति संभाजीनगर में 115 सीटों के लिए मतगणना जारी है। ताजा रुझानों के अनुसार भाजपा 21 सीटों पर जबकि शिवसेना 15 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 6 सीटों पर, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन 12 सीटों पर आगे है। मतगणना अभी जारी है, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किए जाएंगे और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव 20 जनवरी को होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली में लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चुन यी से होगा। इससे पहले खेले गए मैच में लक्ष्य सेन ने जापान के किंटा निशिमोतो को हराया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी दी है। मंगलवार तक असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर घने कोहरे की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।